ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई के लिए आज सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर्व के उपलक्ष्य में राजधानी के लाल किला और चांदनी चौक में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज शहर के अप्सरा बॉर्डर से कश्मीरी गेट बस अड्डा के बीच कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने नशा मुक्ति अभियान की प्रगति को लेकर आज पूर्वी दिल्ली जिले के कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने उस फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है जिसमें दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को उनकी आयु पूरी होने पर ईंधन नहीं देने और उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए गए थे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई के लिए आज सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याओं को भी सुना और तय समय में प्रभावी कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई शिविर में जल बोर्ड, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, दिल्ली नगर निगम जैसे करीब 1 दर्जन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई सरकार, शासन और जनता के बीच संवाद का सेतु है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका समाधान भी कर रही है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा सदन जनता की सुनवाई और सेवा के लिए है।
ये सेवा सदन जनता की सेवा के लिए है, जनता की सुनवाई के लिए है। ये अंतर है मुख्यमंत्री के अंदर। एक मुख्यमंत्री शीश महलों में रहता था और कभी पब्लिक से मिलना भी पसंद नहीं करता था, और दूसरे मुख्यमंत्री ने सेवा सदन खोला है। जन सेवा सदन जनता के लिए है। आम साधारण लोग जो सीएम से मिलना चाहते हैं उनको दर दर ना भटकना पड़े, ये अंतर है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज पहली बार जनसेवा सदन में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया था। इससे पहले तक मुख्यमंत्री के शालीमार बाग स्थित घर पर ही जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया जाता था। दिल्ली मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर्व के उपलक्ष्य में राजधानी के लाल किला और चांदनी चौक में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी है। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष प्रकाश और ध्वनि शो, कीर्तन दरबार, संगोष्ठी, चित्रकला, ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी और श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का सार्वजनिक पाठ शामिल किए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यह अपनी तरह का पहला आयोजन होगा। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय इतिहास में सिख शहादत नाम से नया कोर्स शुरू किया है। इसे सिख समुदाय के न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा में दिए गए योगदान की औपचारिक मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज शहर के अप्सरा बॉर्डर से कश्मीरी गेट बस अड्डा के बीच कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। श्री मिश्रा ने कहा कि सावन आरंभ होने से पहले ही कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और 11 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कांवड़ शिविरों को मुफ्त बिजली और स्थान उपलब्ध कराने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने नशा मुक्ति अभियान की प्रगति को लेकर आज पूर्वी दिल्ली जिले के कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में समाज कल्याण मंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल स्टोर्स और अन्य जगहों पर ऐसे उत्पादों की बिक्री में सावधानी के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री सिंह ने जोर देते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने उस फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है जिसमें दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को उनकी उम्र पूरी होने पर ईंधन नहीं देने और उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए गए थे। आयोग ने ऐसे वाहन स्वामियों को राहत देते हुए इस वर्ष 31 अक्टूबर तक दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने की अनुमति दी है। हमारे संवाददाता रईसुद्दीन की रिपोर्ट।
राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर लगी रोक फिलहाल हटा दी गई है। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने और उन्हें तुरंत जब्त करने की कार्रवाई को अब इस साल 1 नवंबर से अमल में लाया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बयान में कहा है कि 1 नवंबर से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में उम्र पूरी कर चुके वाहनों में ईंधन भरने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध अगले वर्ष 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में शैक्षणिक ज्ञान को सामाजिक कल्याण के साथ जोड़कर समाज की आकांक्षाएं और ऊर्जा आवश्यकताएं पूरा करने वाली स्मार्ट रणनीति बनाने की आवश्यकता है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत केवल 1/3 है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन ऊर्जा शिक्षा के लिए एक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली अत्यंत आवश्यक पहल है।
कि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में लगती है, एनर्जी डे टू डे लाइफ में लगती है, एनर्जी सभी में लगती है। एनर्जी एक हॉरिजॉन्टल टॉपिक आज है। इस समय में इसमें कैसे सीनेरियो आगे होगा, एनर्जी की एंड टू एंड नॉलेज, सस्टेनेबिलिटी से लेके कंजम्पशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके स्मार्ट यूज तक, हमें एक दुनिया में नया प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। और ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से नहीं होगा, इसको एकेडमिक नॉलेज को सोसाइटल प्रैक्टिस से कन्वर्ट करना पड़ेगा।
श्री प्रधान ने आशा व्यक्त की कि ये पहल ऊर्जा शिक्षा को समग्र शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने की एक लंबी यात्रा का आधार साबित होगी। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर केंद्र में लोकतांत्रिक अध्यापक मंच द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम के संबंध में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भाग लिया और कहा कि एक साथ चुनाव होने से जन भागीदारी मजबूत होती है, साथ ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने कहा कि देश का मतदाता आज जागरूक और समझदार है, वो राज्य और केंद्र के मुद्दों को अलग अलग समझता है और सही फैसला लेता है। राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। इनमें 5 ट्रांसजेंडर और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये बांग्लादेशी नागरिक लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे और रात के समय आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। पकड़े गए लोगों के निर्वासन के लिए पुलिस ने उन्हें विदेशी पंजीकरण कार्यालय को सौंप दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि एक सब्जी विक्रेता को दुकान संचालित करने की एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और 10,000 रुपये प्रति महीना देने के लिए कहा था। सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी थाना उत्तरी द्वारका में तैनात था। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने पुलवामा आतंकी घटना में इस्तेमाल विस्फोटक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर चिंता जाहिर की है। श्री खंडेलवाल ने कहा है कि आतंकियों को धन उपलब्ध करवाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका की जांच होनी चाहिए, साथ ही इससे जुड़े नियमों पर भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल विस्फोटक ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने आज 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा राणा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ये फैसला लिया गया है। आरोप पत्र में तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी और जब्ती ज्ञापन तथा कई अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर आयोजित पहले वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल होंगे। जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने कहा है कि ये सम्मेलन आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। सम्मेलन में 3 दिनों तक 100 से ज्यादा शोधपत्र प्रस्तुतियां, 17 केंद्रित सत्र, कई पूर्ण संबोधन और विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में आज राज्य में बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर राज्य में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री प्रसाद ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान क्यों किया। उन्होंने बताया कि बिहार में 7,90,00,000 मतदाता हैं और 4 करोड़ मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम 2003 तक मतदाता सूची में थे उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नाथुला सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्ष 2025 का 5वां जत्था आज सुबह वहां गया। दिल्ली से रवाना हुए इस जत्थे में 49 लोग शामिल हैं, जिनमें 42 यात्री, 2 संपर्क अधिकारी और 1 ITBP डॉक्टर हैं। इसके अलावा 4 सहायक कर्मचारी पहले से ही गांगटोक में तैनात हैं। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल आधार शिविर मार्गों से सुचारू रूप से जारी है। इस महीने से 3 तारीख से शुरू हुई ये यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है। कश्मीर क्षेत्र में हिमालय की गोद में 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा हिमलिंग शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक उत्साह के बीच आज 7वें दिन दोपहर तक 1,21,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। इस बीच 302 वाहनों में 7,579 यात्रियों का 8वां जत्था आज सुबह भगवती नगर जम्मू आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल स्थित अपने अपने आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर को अमेरिका में हिरासत में लिया है। उसे आज देश वापस लाया जा रहा है। मोनिका कपूर पर 2002 में आयात निर्यात धोखाधड़ी का आरोप है और वो तब से फरार हैं। CBI ने कहा है कि कथित धोखाधड़ी के बाद मोनिका कपूर 1999 में अमरीका चली गई थी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि खेलो भारत नीति 2025 के तहत सरकार न केवल प्रतिभाओं की तलाश के लिए बल्कि विश्व स्तरीय कोचिंग और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उन्हें बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। सुश्री खड़से ने आज उत्तर प्रदेश के मोदीनगर स्थित वेटलिफ्टिंग वॉरियर्स अकादमी का दौरा किया। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई के लिए आज सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर्व के उपलक्ष्य में राजधानी के लाल किला और चांदनी चौक में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज शहर के अप्सरा बॉर्डर से कश्मीरी गेट बस अड्डा के बीच कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने नशा मुक्ति अभियान की प्रगति को लेकर आज पूर्वी दिल्ली जिले के कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।